ॐ ज्ञानशाखाया चक्षुन्मीलित तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है और श्री नरोत्तम दास ठाकुर आज हम तिरुभाव तिथि हैं। जैसे हम भगवद गीता से सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वादयः पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जिनः। तो जन्म और कर्म, भगवान अर्जुन ने जब भगवान को पूछा कि ये कृष्ण क्या बातें कर रहे हो, अभी कहते हो कि मैंने तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये मनो ईश्वापो इतने करोड़ों करोड़ों साल पूर्व दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके और मेरे आयु एक ही है और आप और हम बहुत नजदीक के मित्र आदि हैं, ये कैसे संभव है। तो भगवान उनको बताते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मनी तवर्चार्जुन कि हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत अधिक जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे वह सब ज्ञात है या याद है लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है। तब कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन तुम्हारे जन्म और कर्म में और मेरे जन्म और कर्म में बहुत अंतर है। तो भगवान अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को स्थापित करते हैं कि वो सर्वसाधारण इस भौतिक बद्ध जीव की भांति उनके जन्म और कार्य नहीं है। केवल कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को जानता है तो वो सरलता से भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो वही बात भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनको लागू होती है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्युनाय संगे आय से न संगे जाय न तथाय। तो वो कहते हैं जिस प्रकार से कृष्ण का जन्म नहीं होता, कृष्ण की मृत्यु नहीं होती, वैसे ही उनके जो भक्त है उनका जन्म नहीं होता, उनके जो भक्त है उनका मृत्यु नहीं होता। वो तो जब भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो उनके शुद्ध भक्त भी इस जगत में भगवान के साथ आते हैं और संगे जायमेर तथा फिर से भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। इसलिए धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कबो नये पद्म पुराण ते यहां व्यक्त करी कहे। तो वृंदावन दास ठाकुर वैष्णव तत्व को स्थापित करते हैं। इसलिए हम वैष्णव के प्रति भौतिक बुद्धि या जड़ बुद्धि प्रकट करते हैं जब हम वैष्णवता की जो महानता है उसको नहीं जानते और वैष्णव के अज्ञानता के कारण, उनकी महानता के अज्ञानता के कारण हम वैष्णव अपराध के भागी बनते हैं। इसलिए ये सारे पुराण बारंबार भगवान के भक्तों की जो महिमा है उसको स्थापित करते हैं और हमें सावधान करते हैं कि दोष बुद्धि परिहरी, क्योंकि बद्ध जीव का लक्षण क्या है, उसकी जो बुद्धि है दोष से भरी है, जहां जहां दृष्टि डालता है वहां वहां उसे दोष नजर आते हैं। इसलिए जो बद्ध जीव है उसको या जो साधक है इस दोष बुद्धि से रहित होना चाहिए और उसको ये जानना चाहिए कि महत सेवा द्वारा आहुर विमुक्ते, कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है और वो है महत भक्तों की सेवा। हाँ, इसलिए तो कपिल देव अपनी माता देहोती से कहते हैं, देहोती कहती है कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे जो पति कर्दम मुनि जिनके लिए भगवान प्रकट हो गए और पुत्र मुझे मिले हैं साक्षात भगवान, लेकिन मैं अभागिनी हूं, दुर्भाग्यशालिनी हूं, क्योंकि मैंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया और इंद्रियों को वश में न करने के कारण मैं अज्ञानता में ही बनी रही, बल्कि मेरे पास ऐसा पुत्र था और ऐसा पति था जिनका मैंने लाभ नहीं उठा पाए। तो ऐसे हृदय में बहुत पश्चाताप व्यक्त करते हुए वह अपने पुत्र भगवान कपिल को अप्रोच करती है और उनको प्रश्न पूछती है। तो कपिल उनको बताते हैं कि महत सेवा द्वारा माहौल विमुक्ते, कि कोई व्यक्ति महत या महात्मा या आचार्य वैष्णव की सेवा करता है तो मोक्ष का जो दरवाजा है उसके लिए खुला हो जाता है, और यदि व्यक्ति भौतिक भोग के प्रति आसक्त व्यक्ति की सेवा में लगा रहता है तो मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाता है। सेवा तो करनी ही करनी है, या तो जो उन्नत भक्त है महत भक्त है उनकी सेवा करो, या भौतिकता या भोग प्राप्ति की अभिलाषा में लिप्त व्यक्ति की सेवा करो। सेवा से हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए राम गोविंद कविराज कहते हैं, चपल सुख लागिरे दुर्जन सेविनु, कृपण दुर्जन सेविनु, मैंने जीवन बिता दिया कृपण दुर्जन लोगों की सेवा करने में, लेकिन हे कृष्ण आपकी और आपके भक्तों की मैं सेवा नहीं कर पाया। इसलिए वैष्णव तत्व या वैष्णवता को तत्व से जानना चाहिए, मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनकी महिमा या उनके पोजीशन उनके स्थान से हमें ज्ञात होना चाहिए और सदैव सोचना चाहिए कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के हृदय हैं। क्या है? हृदय है। तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए जब हम भक्तों से व्यवहार करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। तो जो भी हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे से उसमें सावधानी रखनी चाहिए। इसी कारण से तो परीक्षित महाराज को भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी। भगवान कब सहायता करते हैं? जब हम भगवान के भक्तों की महानता से ज्ञात होते हैं। फिर परीक्षित महाराज के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया मृत्यु, उन्होंने सारी चीजों को त्यागा और वो जानते थे कि मेरा सॉल्यूशन किसी के पास है तो कृष्ण के प्रिय डिवोटीज। इसलिए वो सब त्याग कर गंगा के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और वहां ऋषि मुनियों का आश्रय लेते हैं, और भगवान जब देखते हैं कि परीक्षित को ज्ञात है भगवान के भक्तों की महिमा, तब वो शुकदेव गोस्वामी को हृदय में प्रेरित करते हैं और शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित के पास भेजते हैं। तो मतलब कोई डिवोटी भगवान की ओर जाने के लिए तैयार है और साथ ही साथ वो ये जानता है कि मुझे भगवत प्राप्ति संभव है यदि मैं भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करूंगा, तो भगवान उस व्यक्ति के लिए अपने भक्तों को भेज देते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में कहते हैं, तब निज जने कौन महाजने पाठाया दिला तुम्हें। हे कृष्णा, आपने देखा कि मैं बहुत भौतिक चीजों में लिप्त था, इस मेरी दयनीय स्थिति को देखा और आपने मेरे उद्धार हेतु एक महाजन या महान भक्त को भेजा जो आपको बहुत प्रिय है। तो जो भी डिवोटी हमारे निकट है, या आध्यात्मिक गुरु। शिष्य का दृष्टिकोण गुरु को देखने का कैसे होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि गुरु को सदा शिष्य देखे कि राधा रानी या कृष्ण के सबसे प्रिय कोई है तो मेरे गुरुदेव है। तो वो कभी भी गुरु को उनकी उन्नत पोजीशन से नीचे नहीं देखेगा, और कभी भी गुरु के प्रति अपराध या अवज्ञा की भावना उसके हृदय में जागृत नहीं होगी। क्योंकि हम जब गुरु का प्रिय संबंध कृष्ण के साथ नहीं देखते, गुरु का प्रिय संबंध श्रीमती राधिका के साथ नहीं देखते, तो हम आध्यात्मिक गुरु के एक्टिविटीज को छोटा देखते हैं और गुरु में भी हमें दोष नजर आता है और हम फिर अपराध कर बैठते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी का उनके सामने आगमन हुआ तो वो शुकदेव गोस्वामी को देखकर ही कहते हैं एशाम संस्मरणा पुंसः, कहते आपका स्मरण करने मात्र से ही सारे भौतिक श्रृंखलाएं खत्म हो सकती हैं। तो क्या कहा जाए, आप जैसे महान भक्त के भक्तों को जल दे, आप जैसे महान भक्तों को बैठने के लिए आसन दे, आप जैसे महान भक्तों की सेवा करें, केवल आपका स्मरण करने से ही भौतिक बंधन छूट जाता है तो फिर सेवा करने से क्या हो सकता है। इसलिए तो भागवतम स्टार्ट होते ही इस चीज की शिक्षा देता है। सबसे पहले कोई उदाहरण भागवतम में हमें प्राप्त होता है तो वो नारद मुनि का, जो दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होकर उन्होंने किसकी सेवा की? भक्ति वेदांतों की सेवा की। पद्म पुराण में वर्णन आता है वो भक्ति वेदांत कौन थे? चार कुमार थे जो उनके घर या वहां आए थे। उनकी माता दासी थी, सर्वण थी, वो उनकी सेवा करते थे। अपनी माँ को सेवा करते हुए देखकर ये दासी पुत्र नारद भी उनकी सेवा करने लगा। तो मतलब बच्चे किससे सीखते सबसे अधिक? माता पिता से। माता पिता बोलते रहते, डांटते रहते, बेटे करो करो करो, लेकिन माता पिता खुद माला लेकर उनके सामने जप करेंगे, माता पिता खुद भगवान का भोग बनाएंगे, ऑफरिंग करेंगे, आरती करेंगे, बैठकर कीर्तन करेंगे, जब सुनेंगे तो बच्चे भी ये देखकर खुद करना शुरू करते हैं। लेकिन हम केवल बोलते रहते हैं पढ़ जप कर, ए कीर्तन कर, भोग लगाओ, लेकिन हम कभी करते नहीं। इसलिए अधिक से अधिक दिखाकर करना चाहिए बच्चों के सामने, तो वो सीखते हैं। तो दासी पुत्र नारद ने देखा कि मेरी माता उन वेदांतियों की सेवा कर रहे हैं, उनकी कुटिया सफाई करना, उनके बर्तन धोना, प्रसाद बनाना या जो भी सेवाएं वो कर रहे थे, इसको जब दासी पुत्र नारद ने देखा तो वो भी उनकी सेवा करने लगे। और उसका प्रभाव क्या हो गया? जो दासी पुत्र नारद, दासी पुत्र था वो नारद बने, इतने महान भक्त बने। तो इस प्रकार से शास्त्र हमें इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वैष्णव को हमें सर्वसाधारण रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो वास्तव में भगवान के निजी व्यक्ति है या निजी या प्रिय भक्त है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक भक्त बन के आते हैं। मतलब भगवान से अधिक इस जगत का कल्याण करने का सामर्थ्य या योग्यता भक्तों के पास है। स्वयं कृष्ण आए तो भी जगत का इतना कल्याण नहीं कर पाए, लेकिन वही कृष्ण जब भक्त बनकर आए तो जगत का अधिक कल्याण उन्होंने किया। इसलिए भक्तिरोध ठाकुर हरिराम चिंतामणि में लिखते हैं जीवेरा मंगल चिंता करे, हे चैतन्य महाप्रभु आपका जो हृदय है वो भगवान का हृदय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अंदर हृदय किसका है? भगवान का नहीं है। किसका हृदय है? भक्त का हृदय है। और भक्त का हृदय भगवान से अधिक उदार होता है। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, कि आप जैसे को तैसा, ये कृष्ण का गुण है। लेकिन भक्त के साथ नहीं, भक्त जैसे का तैसा नहीं है। हाँ, भक्त चाहे कितना भी कष्ट जीवन में आपने सहन करे लेकिन दूसरों का सदैव मंगल चिंतित करता है। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में मारा जा रहा था तो हरिदास ठाकुर ने भगवान को प्रार्थना नहीं की, देखो आपका 3 लाख नाम जप करता हूं, इतना बड़ा भक्त हूं मैं, जरा इनको दिखाओ कारनामा, दिखाओ कृष्ण अपना। नहीं, क्या कह रहे थे हरिदास ठाकुर, ये लोग जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, हे कृष्णा आप इनको क्षमा कीजिए। एक ही प्रार्थना हरिदास ठाकुर बारंबार दोहरा रहे थे। तो हम डिवोटी बनने के बाद भी अब क्या कहते हैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध है ना शब्द, दूसरा क्या शब्द है इसी को, बदला। हाँ, हम बदले की भावना लेकर बैठे रहे थे। उसने मुझे प्रसाद ठीक से सर्व नहीं किया, दिखाता उसे, उसने मुझे दर्शन में प्रवेश नहीं करने दिया, उसने मेरे साथ इस प्रकार से किया, तो हम क्या बन जाते हैं, बदले की भावना हमारे अंदर आती है, फिर कभी भी हम शुद्ध नहीं होंगे, कभी भी कृष्ण के प्रिय नहीं बनेंगे। लेकिन यह हरिदास ठाकुर के जीवन में इतना बड़ा प्रभाव था, लेकिन उनके अंदर कोई बदले की या प्रतिशोध का भाव नहीं था, वो एक भावना प्रकट कर रहे थे कि नहीं हाँ कृष्ण इनको क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे ही भक्त का हृदय कृष्ण के हृदय से अधिक विनम्र, अधिक दयालु होता है। इसी कारण से कृष्ण ने भी अपना हृदय निकाल के आ गए, वृंदावन गोलोक में रखा और वहां एक भक्त का हृदय चुरा लिया। कौन थे वो डिवोटी, राधा रानी। श्री राधिकाश हृदय चौरम, चौरागण्य अष्टकम है, उसमें कृष्ण क्या क्या चुराते हैं उसका वर्णन है। उस अष्टकम में कहते हैं कृष्ण सारे चोरों में सबसे अग्रगणी है, श्रेष्ठ है। और ऐसे कृष्ण जब इस भूतल पर उनको आना था तो क्या चुरा के लेके आए अपने साथ, श्रीमती राधा रानी का हृदय चुराया। चुरा के किसी और को दिया नहीं, चुरा कर अपने हृदय को हटाया और उसको रखा और फिर इस जगत के जीवों को देखा। जो हृदय में भावना होती है उस भावना से हम आत्मा से दूसरों को देखते हैं। तो भगवान चैतन्य ने राधिका के हृदय की भावना से इस जगत को देखा तो उनको उनके उनके पास ये चिंता हो गई उनको कि कैसे इस जगत के जीवों का मंगल होगा। और उस मंगल की भावना से उन्होंने क्या किया, गोलोकेरा प्रेमधना हरिनाम संकीर्तन, यह हरिनाम संकीर्तन का वितरण शुरू किया। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनकी खासियत क्या है, मारखाय प्रेम दे, दयालु तो है नहीं है, वो कहते हैं दोनों मार खाने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी क्या देंगे उस व्यक्ति को, प्रेम देंगे, ये उनकी दयालुता है। तो मतलब भक्त बने बिना दया की भावना का उदय असंभव है। और इसलिए तो भगवान से अधिक दया, भगवान से अधिक उदार हृदय भगवान कृष्ण का है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिनको, जो जीवों की मंगल चिंता करते हैं, वो अपने 3 भक्तों के बारे में हमेशा बोलते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला में यह वर्णन आता है कि उनके भक्त प्रकट होने से पहले ही उन्होंने उन भक्तों के बारे में बोला। और वो डिवोटीज कौन कौन थे, सबसे पहले थे श्रीनिवास आचार्य। कौन थे, श्रीनिवास आचार्य, जिन्होंने षड् गोस्वामी अष्टकम की रचना की है, जिनका चरित्र भी बहुत श्रवणीय है और बहुत शिक्षा और लीलाओं से भरा पड़ा है, श्रीनिवास आचार्य। और दूसरे थे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर। और तीसरे थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इन 3 भक्तों का प्राकट्य होने से पहले इन 3 भक्तों की सेवा महाप्रभु ने बता दी। इन 3 भक्तों के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से वक्तव्य किया। और वो कहा किया, 2 भक्तों के बारे में तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में बोला और 1 भक्त के बारे में उन्होंने ट्रैवलिंग करते करते कलाई नटशाला में बोला। तो प्रभुपाद और श्रीनिवास आचार्य के बारे में तो जगन्नाथपुरी में बोला उन्होंने, श्रीनिवास आचार्य के बारे में कहा कि मेरे भक्त होगा जिनकी माता लक्ष्मी प्रिया होगी, पिता होंगे गंगाधर भट्टाचार्य और वो प्रकट होंगे बंगाल में कटवा के नजदीक जाजे ग्राम, और कहा कि वो जो डिवोटी है श्रीनिवास आचार्य, पहले से नाम लिख रख दिया उसका नाम क्या होना चाहिए, श्रीनिवास, बाद में उनको आचार्य उपाधि जीव गोस्वामी ने दी, क्योंकि इतनी विद्वता इतनी दक्षता नॉलेज इतना था कि जीव गोस्वामी उनसे बहुत प्रभावित हो गए वृंदावन में, और जीव गोस्वामी ने कहा आज से केवल तुम श्रीनिवास नहीं हो, आज से तुम क्या कहलाओगे, श्रीनिवास आचार्य। और श्रीनिवास आचार्य की सेवा भी महाप्रभु ने दी और कहा कि तुम दीक्षा पहले बोल दिया, दीक्षा किससे लेनी है और सेवा क्या करनी है, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में भी सेवा क्या और दीक्षा क्या। तो श्रीनिवास आचार्य को कहा कि आप दीक्षा ग्रहण करो वृंदावन जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी से, वो जब बड़े हो गए तो महाप्रभु के जो पार्षद थे उन्होंने कहा महाप्रभु ये बोल के गए हैं आपके लिए, और आपकी सेवा क्या होगी, वृंदावन में जाकर गोस्वामियों के ग्रंथों को वृंदावन से लाकर ओडिशा बंगाल में प्रचार करना, वहां डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम देखते हैं ब्रज संकीर्तन पार्टी वृंदावन से निकलती है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, ये तीनों ग्रंथों का वितरण करते हैं, और दूसरे डिवोटी नरोत्तम दास ठाकुर जिनका आज तिरुभाव है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत पावरफुल आचार्य है और बहुत उनका चरित्र प्रशंसनीय है नरोत्तम दास ठाकुर का। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव 1531 में हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन जाने के लिए वो निकले थे, जब संन्यास लिया कहा मुझे वृंदावन जाना है, तो नित्यानंद प्रभु उनको घुमा घुमा के शांतिपुर ले आते, फिर जगन्नाथपुरी रहे थे, फिर दूसरी बार वो कहते कि वृंदावन जाना है, तो वह एक भक्त के हृदय में है हमेशा वृंदावन जाने का भावना रहना चाहिए, जिससे क्या होगा धाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है। कोई व्यक्ति वृंदावन वृंदावन का स्मरण करता है वो हरे कृष्ण महामंत्र के समान है, कृष्ण नाम के समान ही कौन सा नाम है, वृंदावन शास्त्र कहते हैं। कोई व्यक्ति वृंदावन को देखकर उस दिशा में प्रणाम करता है और अपने देह को त्याग करता है तो वृंदावन प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसे वृंदावन जाने की कामना हमारे सारे आचार्यों में थी। अब देखो उनकी युवा अवस्था जब आती है या बाल्यावस्था, तभी सारे आचार्य क्या कहते, कहा जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, और हम वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी आसक्तियों को त्याग नहीं पाते। वहां सारे आचार्य कहते वृंदावन जाना है, ये नरोत्तम दास ठाकुर भी वृंदावन जाने के लिए तैयार थे। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुंचे दूसरी बार, उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, तो वृंदावन के लिए वो निकलते हैं, तो उनके साथ सारे भक्त निकलते हैं, हजारों हजारों भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ निकले। और राजा प्रताप रुद्र ने एक सेवा स्वीकार की थी कि जहां जहां चैतन्य महाप्रभु अपने यात्रा के दौरान रुकेंगे वहां उनके रहने के लिए घर होना चाहिए, वहां उनके लिए प्रसाद आदि होना चाहिए, तो घोड़े के ऊपर बहुत सारा प्रसाद जगन्नाथ का डालकर महाप्रभु जहां रुकते थे वहां पहुंचाया जाता था, जहां जहां जाते थे। और जहां जहां चैतन्य महाप्रभु अपने ट्रैवलिंग में नदी में स्नान करते थे उस स्थान में घाट बनाया जाता था और एक स्तंभ बनाया जाता था कि महाप्रभु का स्मरण हो कि यहां स्नान किया है। तो प्रताप रुद्र की भावना क्या थी, उन्होंने कहा कि जहां जहां महाप्रभु ने स्नान किया है उस स्थान में मुझे मृत्यु आए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, उस स्थान में अपना देह त्याग करना चाहता हूं। ये प्रताप रुद्र राजा की भावना थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे शांतिपुर गए, भक्तों से मिले और आगे जाकर वो राम के लिए जाते हैं, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, और फिर वहां से रूप सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये उचित नहीं है, वृंदावन की यात्रा तो इतने सारे सर्कस के भांति इतने लोगों को लेकर नहीं की जा सकती, करना उचित नहीं है। वृंदावन तो बस अकेले जाओ तो एक या दो लोग अपने साथ हो तो उचित है वृंदावन गमन, तो आप भजन या कृष्ण में कृष्ण का स्मरण अच्छी तरह से कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन वापस यू टर्न लेते हैं, वापस कहते पूरी चलते हैं, नहीं जाएंगे हम। तो वहां कनाई नटशाला में आते हैं, कनाई नटशाला उसको कहते काना ग्राम, मतलब कृष्ण का गांव है, जैसे कृष्ण का गांव यहाँ कौन सा है वृंदावन, तो वैसे ही बंगाल में वो कनाई नटशाला है। मैं लास्ट इसी साल गया था मार्च में, मायापुर से बहुत दूर है 7-8 घंटे, तो इतना अमेजिंग स्थान है जहां कृष्ण की लीला स्थलियां हैं। तो वहां चैतन्य महाप्रभु गए और वहां उनके भक्तों के संग में कीर्तन करने लगे, इतना कीर्तन किया और सामने पद्मा नदी गंगा नदी बहती है, और वैसे भी उस नदी जब हमने पार की तो हमें 1 घंटा लगा यहां से उस तरफ जाने के लिए, इतनी विशाल। तो चैतन्य महाप्रभु नदी की ओर देखते हुए हैं और नदी के उस पर एक गांव उनको दिखाई दे रहा था, उस गांव को देखते हुए हैं और कीर्तन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बहुत सारे डिवोटीज थे जोर जोर से कीर्तन करने लगे और कीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु बोलते थे क्या नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तभी नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों को लगा कि आज महाप्रभु हरि बोल कहते सुना है लेकिन ये क्या बोल रहे हैं नरोत्तम नरोत्तम, ये चीज हमने सुनी नहीं। तो भक्तों को लगा ये क्या हुआ, तो फिर डिवोटीज नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप पूछ सकते हो, बाकी लोग उनसे डर रहे थे। तब नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि हे प्रभु आप नरोत्तम नरोत्तम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो उस गांव इस नदी के पार उस गांव में एक महान मेरा भक्त जन्म ग्रहण करेगा, उसका नाम क्या होगा नरोत्तम, और वो ऐसा भक्त होगा कि जो सब जगह कृष्ण प्रेम का वितरण करेगा। और उन्होंने कहा कि उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, हे नित्यानंद तुम्हारे सामने इस जो पद्मावती या पद्मा नदी है, पद्मा नदी क्या है, गंगा जब बंगाल की ओर बहती है तो गंगा की बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, तो उस अलग अलग शाखाओं का अलग अलग नाम है। तो जो शाखा बांग्लादेश की बहती है गंगा की तो उसे पद्मा नदी कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपना जो प्रेम है वो इस पद्मा नदी के पास रख रहा हूं, और पद्मा नदी को कहा कि पात्र योग्य भक्त आएगा जब तुम में स्नान करने के लिए है तब तुम उसे एक प्रेम प्रदान करना। तो उस पद्मा नदी कहते मुझे कैसे पता चलेगा कौन वो भक्त है, तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब वो बालक या वो युवक स्नान करेगा तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लगेंगी अचानक ही, तुम समझ लो कि ये वही वो व्यक्ति है और तो उसे ये जो कृष्ण प्रेम में स्टोर कर रहा महाप्रभु ने उसको दे दिया कृष्ण प्रेम स्टोर करने के लिए, और महाप्रभु वापस चले जाते हैं जगन्नाथपुरी। फिर समय में उस गांव जिसका नाम था खेतुरी या गडेर हाट भी कहते हैं, खेतुरी ग्राम में कृष्ण कृष्णा कृष्णानंद दत्त और नारायणी उनके माता पिता का नाम है, उनके बालक के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होता है। ये कृष्णानंद दत्त महान राजा थे, उन्हीं के परिवार में आगे चलकर केदारनाथ दत्त कौन है भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट होते हैं। तो कृष्णानंद दत्त ये महान राजा थे और उनके पुत्र के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महापुरुष के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे, और जब उनका अन्न प्राशन संस्कार करने वाले थे उनके माता पिता, तो अन्नप्राशन में अन्न खिलाया जाता है बच्चे को पहली बार। तो जब उस बालक को स्पून से अन्न खिला रहे थे, सारे रिलेटिव सारा गांव एकत्रित हुआ था और सारे ब्राह्मण आदि आए थे, लेकिन जैसे स्पून मुंह के पास ले जाते थे बच्चा जोर से रोने लगता था और अपना मुंह बंद कर लेता था। तो राजा को लगा, उनके पिता जो कृष्णानंद राजा हैं, उनको लगा कि ये क्या अशुभ है कि आज के दिन मेरा बालक इतना जोर से चिल्ला रहा है, मुंह बंद कर रहा है, अन्न स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा और एक वैष्णव डिवोटी था, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये नरोत्ता हम इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि ये कृष्ण को भोग नहीं लगाया है। सबसे पहले क्या करें, इसको कृष्ण को भोग लगाओ फिर उसको खिलाओ, तब आप देखो। तो ये राजा और उनकी माता भोग लगवाते हैं और फिर जब खिलाने लगते तो नरोत्तम क्या करता है, उस अन्न को ग्रहण करता है और फिर उनको स्कूल में भेजा जाता है। तो स्कूल में तो हमेशा नंबर वन थे नरोत्तम दास ठाकुर, इसलिए प्रभुपाद जब हमेशा श्रुतिधर का उदाहरण दिया करते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर का नाम लेते थे। श्रुतिधर में जो एक बार सुन के स्मरण रख लेता है, तो नरोत्तम दास श्रुतिधर थे और जो स्कूल से आते थे तो दौड़कर अपने घर से बाहर जाते थे और गांव में जो कृष्णदास ब्राह्मण था उनसे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके जितने भक्त हैं उनके चरित्र को सुनते थे। ये सुनना नरोत्तम दास ठाकुर को सबसे अच्छा लगता था। एक भी दिन ऐसा नहीं बिताते थे कि जिस दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना सुना, नित्यानंद प्रभु के बारे में ना सुना या उनके भक्तों के बारे में ना सुना। तो यह सुनते सुनते क्या हो गया, विरह की अनुभूति हो गई। इसलिए सुनना बहुत पावरफुल है। डिवोटीज या आचार्य या कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं तो धीरे धीरे भौतिक विषयों के प्रति हमारी अरति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट कम हो जाती है और जिसके बारे में सुनते हैं उससे वियोग, उससे विरह की अनुभूति होती है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने दोनों छाती बालक के थे, पीटते थे और कहते थे कब मेरे ऊपर नित्यानंद की कृपा होगी, कब मेरे ऊपर चैतन्य की कृपा होगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही कोई व्यक्ति वृंदावन में वास्तव्य कर सकता है। नित्यानंद कौन है, आदि गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते हैं, बल्कि ये तो अपने प्राणों को त्यागना चाह रहे थे, अभी 12 साल के थे, कितने साल के, 12 साल। तभी उन्होंने कहा, नित्यानंद ने कहा कि क्या करो, है नरोत्तम तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, हाँ तुम क्या करो अभी कल सुबह जाकर पद्मा नदी में स्नान करो। उनका गांव नदी के किनारे था, स्नान करो जहां चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे लिए प्रेम रखा है। अब सोचो कितना फॉर्चुनेट है कि चैतन्य महाप्रभु जिनके लिए प्रेम छोड़कर गए हैं उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर महाप्रभु के जो प्रेम के भाव है उससे बना हुआ था। उनके शरीर में कोई हार्ट क्या कहते हैं हड्डी मांस ये सब नहीं, उनका जो तिरोभाव होता है तो हम देख सकते कि उनका शरीर ना जलाया गया ना जमीन में दफनाया गया ना कुछ, उनका शरीर इस पदार्थों से बना हुआ नहीं था। उनका पूरा शरीर चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट हो रहे थे उस प्रेम से बना हुआ था उनका शरीर। इसलिए कहते प्रेममय तन, तनु का मतलब है शरीर, प्रेममय तनु था नरोत्तम दास ठाकुर का। तो नरोत्तम दास ठाकुर सुबह सुबह उनकी माँ उनको प्रेम से नारू कहती थी, क्या कहते थे नारू। तो नारो या नरोत्तम जो सुबह स्नान करने गए और वो सांवले वर्ण के थे, जैसे उन्होंने अपना पांव उस नदी में रखा इतनी बड़ी तरंगे आने लगी, आसपास के गांव वाले सोचने लगे अभी तो वर्षा हुई नहीं बारिश आदि नहीं है फिर भी इतनी बड़ी बड़ी तरंगे लहरें क्यों आ रही हैं। तो जो पद्मा नदी समझ गई कि ये कौन सा बालक है, नरोत्तम है जिनके लिए चैतन्य देव ने मेरे पास वो प्रेम रखा था, तो वो स्वयं प्रकट होती है और उसको प्रेम रूपी जल देती है, और उस जल को जैसे पीते हैं नरोत्तम वैसे ही उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन आकर उनका सांवला वर्ण खत्म हो जाता है, गोरे वर्ण के हो जाते हैं, सदैव कृष्ण कृष्ण गौर गौर कहने लगते हैं, चैतन्य चैतन्य का वर्णन करने लगते हैं, और आंसुओं से आंसुओं की धारा बह रही थी, उनके शरीर कंपन होने लगा। इतने छोटे से बालक स्नान करके और सुबह ये अर्ली मॉर्निंग घर से भाग गए थे अकेले, तो सुबह माता पिता जब उठे उन्होंने देखा, अरे मदर ने देखा नारू नहीं है, नरोत्तम नहीं है, तो वो भयभीत हो गए और ढूंढने लगे। दोपहर हो गई फिर भी नरोत्तम उनको नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते वो नदी के किनारे आए, देखा बालक तो वही लग रहा है लेकिन कलर कुछ अलग है, भाव आदि कुछ अलग है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया। नरोत्तम रो रहा है, वृंदावन कृष्ण कह रहा है, और तब इन सबको लगा, माता ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, तो नरोत्तम कहते कि एक सुवर्ण कलर का रंग का एक बालक आया और उसने मेरा आलिंगन किया। किसने कहा? नरोत्तम ने। सुवर्ण वर्ण का बालक आया और उसने मेरा आलिंगन किया, आलिंगन करने मात्र से ये मेरी दशा हो गई है, और तब से मैं केवल रो रहा हूं, और वृंदावन जाने का वियोग प्रस्तुत कर रहे थे। तो माँ उनके पिता को लगा कि कोई भूत ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने एक भूत उतारने वाले को बुलाया, ओझा, ओझा होता है ना, बुलाया, उसने मंत्र आदि उच्चारण किए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बेचारा रो रहा है वृंदावन के वियोग में। फिर उस ओझा ने कहा कि इसको एक सूप पिलाना पड़ेगा। पिता ने पूछा कौन सा सूप, कहते हैं कि जो सियार है जाकर सियार को कुक करना पड़ेगा, सियार को मारो काटो उसका सूप बनाओ और इस नरोत्तम को पिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा। तो जब नरोत्तम ने ये सुना कि मेरे लिए किसी प्राणी का वध हो रहा है तो रोने लगे। उन्होंने पिता को कहा किसी का वध आदि करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पिताजी डर गए। तब से 12 साल की आयु से उनकी जो हालत हो गई कृष्ण महाप्रभु के वियोग में, तो वो फिर से ठीक नहीं हुए। फिर कुछ दिन तक वहां रहे, और एक दिन वहां बंगाल के जो राजा हैं उन्होंने संदेश वहां उनको भेजा कि जाओ कृष्णानंद दत्त को मुझसे मिलने के लिए लाओ। तो उनके भाई कृष्णानंद दत्त के भाई थे पुरुषोत्तम दत्त, तो इन दोनों मिलने के लिए गए। तो यहाँ नरोत्तम ने सोचा माँ तो अकेले घर में है, कुछ बहाना बना के भाग जाते हैं अभी वृंदावन। माता को न बताकर नरोत्तम अपने घर से भाग जाते हैं। ये भागने की परंपरा अभी से नहीं है, शुरुआत से ही है। सब जो भी महान आचार्य वो सारे क्या हो गए हैं, भाग गए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी वो कितनी बार भागे, रोज ही भागते थे। उनके माँ ने कहा इसकी शादी कर लो ये ठीक हो जाएगा, तो वो कहते हैं, उनके पिता कहते हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य श्री ऐश्वर्या अप्सरा सम, वो कहते हैं कि इसकी जो इसके पास धन इंद्र के समान है, और इसके पास श्री भी जो पत्नी है वो कैसी है, अप्सरा से भी सुंदर है। इस संसार में ये दो चीजें हर एक को बांध के रखती हैं। तो उनके पिता कहते हैं माँ ने कहा इसको ना लोहे की चैन से बांध के रखो रघुनाथ को। तो रघुनाथ ने कहा लोहे की चैन कुछ बांध के नहीं रख सकती। इस संसार में दो चीजें बांध के रखती है व्यक्ति को, एक है सुंदर स्त्री और दूसरा है धन। तो उन्होंने कहा रघुनाथ के पास दोनों चीजें हैं लेकिन ये दोनों चीजें इसको बांध के नहीं रख रहे हैं, क्यों? तो उनके पिता कहते हैं चैतन्य चंद्रेर बातुर के राखिते पारे, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है उसको इस संसार में कोई भी वस्तु बांध के नहीं रख सकती। इसलिए हमें पागल होना है किसके लिए, चैतन्य चंद्र के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने अपने मायापुर मंदिर का नाम क्या रखा? चैतन्य चंद्रोदय मंदिर। तो ये चैतन्य चंद्र के लिए पागल हो गए थे, इसलिए इस संसार की कोई वस्तु बांध के नहीं रख पाए। वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर के साथ हुआ, वो भी महाप्रभु के लिए पागल हो गए वृंदावन के लिए, और वो दौड़ने लगे 13 दिन या कई दिन। कहा उनको खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, किसी गौशाला में जाते थे, थोड़ा सा दूध पीते थे, फिर दिन दिन भर चला करते थे। ऐसे चलते चलते नरोत्तम फाइनली मथुरा पहुंचते हैं, और मथुरा विश्राम घाट में जाकर थोड़ा सा विश्राम करते, स्नान करते हैं, और फिर वहां से उनको पता चलता है कि रूप और सनातनी जगत में नहीं रहे, बहुत दुखी हो गए। फिर वहां से वो वृंदावन जाते हैं, गोविंद देव टेम्पल, जहां सारे वैष्णव उनका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से उनको एक मित्र डिवोटी मिलता है, जिनका नाम क्या था? श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के साथ उनकी मित्रता होती है, और ये दोनों जीव गोस्वामी के अंडर रह के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन पहुंचे तो वो लोकनाथ गोस्वामी से गोपाल जाते और उनसे दीक्षा की याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे दीक्षा प्रदान करो। पहली बार जब गए उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि हे लोकनाथ गोस्वामी, आप मुझे आपके सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। तो लोकनाथ कहते कि मैं भी महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, आपको कैसे अपनी सेवा में लगाऊं, नहीं लगा सकता। तब नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि यही मेरे पूजनीय है, आराधनीय, आध्यात्मिक गुरु है, कैसे उनके हृदय को जीत लो। तो रोज वो 2 लाख नामों का जप करते थे नरोत्तम दास ठाकुर, और अपने गुरु के प्रति एक विशेष सेवा करते थे। लोकनाथ गोस्वामी जब जाते थे मल त्याग करने के लिए, सुबह मल मूत्र का त्याग, तो हर रोज झाड़ू लेकर उस स्थान को सफाई करते थे, फ्रेश मिट्टी जल आदि वहां रखते थे। और जब उनके गुरु ने देखा कि लंबे कई महीने हो गए कौन मेरी ये सेवा कर रहा है, इतनी तुच्छ है, तो उन्होंने एक दिन झाड़ियों के पीछे खड़े रहकर देखा, लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये राजकुमार होते हुए भी इस प्रकार से विनम्रता से सेवा कर रहा है नरोत्तम, इतनी नीच सेवा। तो उनको गले लगाते हैं और उनको फिर दीक्षा देने के लिए तैयार करते हैं, और फाइनली एक दिन उनको दीक्षा प्रदान करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब उनको दीक्षा प्राप्त होती है श्रावण पूर्णिमा में वृंदावन में, तो अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और जीव गोस्वामी से रोज शास्त्रों को सीखते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, हमें बल्कि सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ग्रंथों को इन महान महान आचार्यों ने इतना बड़े बड़े आचार्यों के अंडर रह के सीखा है, हम 10-20 पेज क्या पढ़ लेते हैं हफ्ते में, तो हमें लगता है कि ज्ञानी बन जाएंगे हम। क्या बन जाएंगे? ज्ञानी नहीं, भक्ति युक्त ज्ञान आवश्यक है। और विशेष रूप से गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक इन ग्रंथों को समझते हैं उतना ही हम भगवान की महिमा को जानते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, सिद्धांत बलिया ना करे आलस, कि सिद्धांत को जानने के लिए व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। जब शास्त्रों को समझते हैं, सिद्धांत को समझते हैं, तो हमारा मन कृष्ण में दृढ़ता से लग जाता है। इसलिए आवश्यक है कि भक्तों को ग्रंथों को पढ़ना चाहिए पागल की तरह। जब भी समय मिले प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ें और समझने का प्रयास करें उन ग्रंथों को। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर उनसे शिक्षा आदि लेते हैं। फिर जीव गोस्वामी इन 3 डिवोटीज को सेवा देते हैं, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर। क्या सेवा देते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मथुरा से बैलगाड़ी खरीदते हैं, बॉक्स खरीदते हैं, उस बहुत सारे सारे बुक्स डालते हैं उस समय उनके बैलगाड़ी और कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स देते हैं इनको लेकर ये तीनों भक्त सारे वृंदावन के भक्तों की चरण धूलि लेते हैं उनसे परमिशन उनका आशीर्वाद लेकर बंगाल की ओर चलते हैं और रास्ते में जाते जाते वान विष्णुपुर है आप मायापुर जाते हो या जगन्नाथपुरी जाते हो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस किसी भी ट्रेन से तो रेलवे स्टेशन आता है विष्णुपुर में लास्ट ईयर अभी गया था वो वृंदावन का स्मरण दिलाता है आपको इतने मंदिर है कृष्ण के राजा वीर हमीर जिसने पुस्तकें चुराई थी श्रीनिवास आचार्य ने उनको दीक्षा देकर भक्त बनाया अपना शिष्य बनाया और उस पूरे राज्य में हर एक व्यक्ति 64 मालाओं का जप करता था सारे लोग और इतने सारे मंदिर और सारे कृष्ण के मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ इतने सारे मंदिर और इतने सारे डेटीज बड़ा सुंदर और सिंपल स्थान है विष्णुपुर तो वहां देखा कि ये सारे ग्रंथ चोरी हो गए तो श्रीनिवास आचार्य का नरोत्तम आप बंगाल चले जाओ श्यामानंद उड़ीसा जाओ मैं ग्रंथों को ढूंढ के आता हूं तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर वहां से सोचते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान देखना चाहता हूं तो वह नवदीप मायापुर जाते हैं और वहां नदी के किनारे बैठे थे तो एक ब्राह्मण को पूछते हैं कि कहां है चैतन्य महाप्रभु का स्थान तो ब्राह्मण कहता है कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को अपने आंखों से देखा है उनको गाइड करते हैं तो वो जाते हैं जिस स्थान में सची माता वगैरह तो नहीं रहे थे विष्णुप्रिया आदि नहीं विष्णुप्रिया थी शायद तो फिर वहां उनके जो सेवक है ईशान ठाकुर या बंसी वदन ठाकुर उनसे मिलते हैं और फिर वहां से वो ट्रैवल करते करते हैं अंबिका कालना जाते हैं वहां से आगे वो खड़दा जाते हैं जानवा माता से मिलते हैं वसुदा से मिलते हैं शांतिपुर जाते हैं जहां अद्वैत आचार्य तो नहीं थे लेकिन उनके पुत्र अच्युतानंद थे अच्युतानंद उनसे मिलते हैं तो इस प्रकार से ट्रैवलिंग करते करते हैं वो काना कुलाकृष्ण नगर में आते हैं कलकत्ता के पास जहां वो अभिराम ठाकुर से मिलते हैं जिनकी गोपीनाथ विग्रह है गोपीनाथ विग्रह को बहुत प्रार्थना आदि करते हैं और फिर भक्तों का स्मरण करके है वो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए गोपीनाथ आचार्य आते हैं फिर नरोत्तम दास ठाकुर जगन्नाथपुरी के सारे लीला स्थलों का दर्शन करते हैं वहां के भक्तों का आशीर्वाद आदि लेते हैं सिद्ध गोकुल जाते हैं छोटा गोपीनाथ जाते हैं गंभीरा जाते हैं सब स्थानों में जाते हैं गुंडीचा मंदिर भी जाते हैं और फिर वो रोने लगते हैं हे सचिनंदन हे गौरहरी आप कब मेरे ऊपर कृपा करोगे ऐसा कहते हुए हाँ वो हाँ श्यामानंद प्रभु से मिलते हैं नरसिंहपुर में और फिर फाइनली श्रीखंड जाकर मुकुंद रघुनंदन नरहरी इनसे मिलकर वो अपने गांव जाते कौन सा गांव था उनका खेतुरी खेतुरी जब गए तो ये तो घर छोड़ के कब गए थे तो वहां गांव के जितने भी डिवोटीज थे या लोग थे उनको पता चला कि नरोत्तम आ रहे हैं तो नरोत्तम तो अकेले पुत्र थे तो सारा राज्य इनको मिलने वाला था लेकिन इनके जो चाचा के पुत्र थे जिनका नाम था संतोष देव वो राजा बने थे और वो इतने सरेंडर थे नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति जब नरोत्तम वहां से आ रहे थे दूर से तो सारे राज्य को सजा दिया दूर से नरोत्तम दास ठाकुर को चलते हुए देखा तो संतोष देव ने दंडवत प्रणाम किया और आकर उनके चरण धोए उसका जलपान किया और फिर संतोष देव ने दीक्षा की याचना की कि आप मुझे दीक्षा देकर हाँ ये करिए कृपा कीजिए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको दीक्षा दी और फिर हम सुनते हैं कि सबसे पहले जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है वो कहां मनाया गया खेतुरी गांव में किसके द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए थे लेकिन ये गौर पूर्णिमा नाम का उत्सव नहीं था पहले नॉर्मल साल बीतते जाते थे लेकिन पहले ऐसे आचार्य थे नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया तब से हम लोग गौर पूर्णिमा मनाते हैं तो जब गौर पूर्णिमा मनाना था तो उन्होंने सारे वृंदावन बंगाल उड़ीसा में सारे वैष्णवों को बुलाया, श्रीनिवास आचार्य और जानवा माता उस समय पूरे हमारे संप्रदाय के लीडर थे। जानवा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु के भार्या या पत्नी है। इस गौड़ीय समाज के वो प्रमुख आचार्य थे, वो सबको दीक्षा आदि देते थे और शिक्षा देते थे, तो वो प्रमुख थी। जब वो सबसे पहले आए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सबसे पहले उन्हें चंदन लगाया, जानवा माता को माला आदि पहनाए, उनके निवास की व्यवस्था की, उनके लिए सेवक आदि दिए। और जानवा माता ने कहा मैं एक सेवा करूंगी सारे भक्तों की इस फेस्टिवल में, और वो क्या करूंगी, जब तक ये फेस्टिवल चलेगा तब तक कुकिंग करूंगी। तो जानवा माता इतने बड़े फेस्टिवल में एक सेवा लेती है, कुकिंग की सेवा, और कठोरता से करती है। तो वहां फिर नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि 6 विग्रहों की स्थापना करने वाले थे, कृष्ण के 6 विग्रह महाप्रभु आदि के, तो उनका अभिषेक वगैरह होने वाला था। तो श्रीनिवास आचार्य इंचार्ज थे, उनका अभिषेक कराया, कीर्तन आदि हुआ। फिर जो गौर पूर्णिमा का दिन आया, उस दिन संध्या के समय में जानवा माता ने आदेश दिया कि हे नरोत्तम तुम अभी कीर्तन करो। तो नरोत्तम बहुत विनम्र थे, उन्होंने कहा मैं कहा कीर्तन करूंगा, इधर बड़े बड़े भक्त हैं श्रीनिवास आचार्य आदि। जानवा माता ने कहा नहीं आप कीर्तन करो। तो जानवा माता के आदेश अनुसार सबकी कृपा और परमिशन लेकर नरोत्तम दास ठाकुर ऊंचे स्थान में बैठ गए। उनके साथ मृदंग बजाने के लिए देवीदास नाम के भक्त थे और उनके पीछे गाने के लिए 4 और डिवोटीज थे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन शुरू किया तो उस फेस्टिवल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसके आंखों से आंसू नहीं बह रहे हो, जिसका हृदय गदगद नहीं हुआ हो प्रेम से। और जब सब रो रहे थे, सब उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे, उसी क्षण अचानक जैसे बिजली कड़कती है वैसे चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व वहां प्रकट होते हैं, बल्कि ये सारे अप्रकट हो गए थे। वो सारे प्रकट होते हैं और कीर्तन करने लगते हैं और फिर सारे भक्त पंच तत्व के अराउंड कीर्तन करने लगे और अचानक पंच तत्व फिर से अप्रकट होते हैं, सारे दुखी हो जाते हैं। तब जानवा माता कहती है कि आप सब बैठो, मैं आप सबको पर्सनली प्रसाद सर्व करूंगी। तो जानवा माता, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, जितने भक्त थे उनको गौर पूर्णिमा का जो फीस प्रसाद है वो सर्व करती है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में तो इतना अधिक है, इतनी लीला है कि कई घंटे चाहिए उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए। जब एक बार नरोत्तम दास ठाकुर एक ब्राह्मण के वहां गए गोपालपुर में, विप्रदास जिनका नाम था, और जब अचानक उस ब्राह्मण के घर गए तो ब्राह्मण ने बहुत उनका स्वागत किया, उनका सम्मान, उनकी सेवा की, और देखा कि ब्राह्मण के चेहरे में कुछ भय है। नरोत्तम ने पूछा कि क्या आपको क्यों भयभीत हो? उन्होंने कहा कि मेरे पास जो राइस जहां मैं स्टोर करके रखता हूं उसमें एक बहुत बड़ा सांप है, जिसके कारण मैं भयभीत रहता हूं, कभी भी मैं अपना स्टोर खोल नहीं पाता। तो नरोत्तम दास ठाकुर हंसते हैं, उठते हैं और स्टोर का दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर चलने लगते हैं। तो सांप तो गायब ही हो गया था नरोत्तम दास ठाकुर के केवल प्रेजेंस मात्र में, लेकिन अंदर एक चीज नरोत्तम दास ठाकुर को मिलती है। बाकी सब लोग बाहर डर के मारे खड़े थे, नरोत्तम दास ठाकुर अंदर गए, कोई सांप आदि नहीं रहा, लेकिन अंदर से जो बाहर आए देखा उनके कंधे में 2 विग्रह हैं। कौन से विग्रह थे? विष्णु प्रिया और गौरांग महाप्रभु। ऐसे 2 अद्भुत विग्रह उनको वहां मिलते हैं और फिर नरोत्तम दास ठाकुर उनकी स्थापना करके उनकी सेवा करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की मैत्री या फ्रेंडशिप रामचंद्र कविराज से थी, बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर ब्रह्मचारी थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम यदि विवाह करोगे तो अत्यधिक कष्ट को महसूस करोगे जीवन में। नित्यानंद प्रभु ने कहा विवाह मत करना। और इनका जो मित्रता है रामचंद्र कविराज से थी, जो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। रामचंद्र कविराज तो एक गृहस्थ डिवोटी थे, लेकिन रामचंद्र कविराज कभी भी
नरोत्तम दास ठाकुर के संग से अलग नहीं रहना चाहते थे। उनका विवाह हुआ फिर भी वो छोड़कर नरोत्तम दास ठाकुर के संग में रहते थे और निरंतर कृष्ण कथा कृष्ण नाम का वर्णन करने में अपना समय बिताते थे। तो कभी कभी रामचंद्र कविराज की पत्नी लेटर लिखती थी कि मेरे इसको भेजो, इसको भेजो, पति को भेजो, तो डांट कर नरोत्तम दास ठाकुर कहते तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ के कर्तव्य को करो, जाओ घर। तो कहते हाँ ठीक है जाऊंगा। तो शाम के समय चले जाते थे और सुबह नजदीकी स्थान था, सुबह मंगल आरती से पहले रामचंद्र कविराज पहुंच जाते थे और देखते थे कि झाड़ू लेकर मंदिर क्या कर रहे हैं रामचंद्र कविराज, सफाई कर रहे हैं। तो इतना प्रेम इन भक्तों के बीच में था। आप जाजीग्राम जाते हैं जहां श्रीनिवास आचार्य का स्थान है, तो वहां तीन पेड़ है और नजदीक नजदीक वो पेड़ है, तीन पेड़ों के नीचे तीन डिवोटीज बैठ के जप करते थे, उनका जप करने का स्थान था। एक पेड़ के नीचे श्रीनिवास आचार्य बैठते थे, एक पेड़ के नीचे रामचंद्र कविराज बैठते थे और एक पेड़ के नीचे नरोत्तम दास ठाकुर बैठते थे। आज भी आप जाएंगे तीन सुंदर पेड़ है जिनके नीचे बैठकर जप करते थे एक दूसरे के साथ। और उसके साइड में एक पेड़ है वटवृक्ष, उसके नीचे भागवतम क्लास होती थी और भागवतम क्लास कौन दिया करते थे, श्रीनिवास आचार्य। तो इस प्रकार से ये जो डिवोटीज है ये सदैव बहुत प्रेम का संबंध था और वो किस पर आधारित था, मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कृष्ण पर वो आपस में सदैव कृष्ण कथा का लेन देन करते थे। तो एक बार नरोत्तम दास ठाकुर जब जा रहे थे तो एक स्कूल के सामने से जा रहे थे, तो वहां के टीचर ने अपने स्टूडेंट के सामने का बहुत उनकी निंदा की, गालियां दी नरोत्तम दास ठाकुर को, काहे शूद्र कही के ब्राह्मणों को दीक्षा देते हो, काहे स्तर, ऐसे बहुत डांटा। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो सहन किया, उन्होंने वो चल के गए। उसी रात जिसने इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर के साथ व्यवहार किया उसको कुष्ठ रोग हुआ, सारा बॉडी गिलने लगा, गल गया, कष्ट के मारे तड़प रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। और वो दुर्गा का भक्त था, वो और ब्राह्मण था। दुर्गा आई उनके स्वप्न में, कहा मूर्ख तुमने एक महाभागवत शुद्ध भक्त नरोत्तम के प्रति अपने जिह्वा से ऐसे वचन निकाले हैं, तुम्हारी जिह्वा भी गल जाएगी और तुम सड़ोगे, कीड़े शरीर में पड़ेंगे तुम्हारे। तो बहुत रो रहा था, उसने कहा नहीं मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। दुर्गा देवी कहती है तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो जाओ, अभी आज ही जाओ नरोत्तम के चरण में जाकर गिरो, उनके चरण धूलि को ले लो, अपने मस्तक में लगाओ और उनसे क्षमा याचना करो। तो वो जाता है, कैसे तो अपने गले में कपड़ा बांधता है, जैसे विनम्रता दिखाने के दो चिन्ह है, दांत में तिनका रखना या फिर गले में क्या करना, कपड़ा बांधना, इसका मतलब है कि मैं आपका शरणागत होना चाहता हूं। वो गए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने तो कोई अपराध अपने ऊपर नहीं लिया था और उनके संग में रह के वो ठीक हुए और एक महान भक्त बन जाते हैं। तो जब एक बार नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज स्नान करने जा रहे थे तो दो एक युवक उनको नजर आए, एक का नाम था हरि नाम और दूसरे का नाम था रामकृष्ण। तो ये दोनों जा रहे थे बकरियों को लेकर। तो नरोत्तम और दास ठाकुर रामचंद्र कविराज जब स्नान करने के लिए कपड़े निकाले तो इन्होंने उन बालकों को देखकर कहा अरे अपने युवा अवस्था को सफल बना रहे हो क्या हरि का भजन करके। तो ये वचन सुन के वो दो युवक आते इनके पास और इनका सौंदर्य इनकी वाणी सबसे आकृष्ट होकर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, हम तो ये बकरियों को लेके जा रहे हैं, दुर्गा पूजा आ रही है, पिता ने कहा इनको काटेंगे मांस खाएंगे दुर्गा पूजा में, इसलिए हमें बकरियां ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर ने वहां नदी के किनारे उनको प्रवचन दिया, इतने प्रभावित हुए हैं उन्होंने बकरियों को छोड़ दिया फ्री और जाकर नरोत्तम दास ठाकुर का जो मंदिर आश्रम था ज्वाइन किया, जाकर हेडशेफ किया और कहा कि हम अभी फुल टाइम डिवोटी बनना चाहते हैं, दीक्षा दीजिए। तो रामचंद्र कविराज ने हरिनाम जो डिवोटी था उनको दीक्षा दी और
नरोत्तम दास ठाकुर ने राम कृष्ण को दीक्षा दी।
और जब उनके पिता को पता चला कि मेरे दो बेटे बकरियां लाने गए, अभी तक आए नहीं, 15 दिन हो गए, कहां है, तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे कि ये नरोत्तम दास ठाकुर के आश्रम में है। बहुत क्रोधित हुआ वो, उन्होंने फिर बहुत वचन बोले कठोर नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति। उसके भी सपने में वो आती है, कौन, दुर्गा देवी। वो कहती है कि तुम अपना भला चाहते हो, नहीं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय खत्म कर डालूंगी, जाके किसके शरण में जाओ, नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ऐसे जब बंगाल में हो रहा था, सारे बंगाल के बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान आदि परेशान थे। उन्होंने वहां के जो राजा थे नरसिम्हा, उनको कहा कि ये नरोत्तम को खत्म करना चाहिए, उनको हरा देना चाहिए। तो राजा ने कहा क्या करना होगा। उन्होंने कहा हमें बहुत बड़े विद्वान को बुलाते हैं, रूप नारायण चक्रवर्ती, रूप नारायण को, जो उनको हरा सकता है। तो ये सारे राजा, वहां के सारे विद्वान ब्राह्मण, ये सब उस विद्वान के साथ चले। और तब नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरे में थे, गांव में। तो उनके दो ये जो भक्त थे, रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनको पता चला कि वो सारे विद्वान आ रहे हैं हराने के लिए। तो ये दोनों पहले जाकर, बीच में गांव आता है, उस गांव में जाकर उन लोगों ने दुकान वहां बनाई। रामचंद्र कविराज मटके बनाने का, कुम्हार का दुकान बना दिया, वहां बैठ गए। और रामकृष्ण ने एक शॉप बनाया जहां पान देने का शॉप था। तो ये जो सारे लोग उस गांव में रुके थे, तो वो कुछ खरीदने गए, और वो गए तो इन दोनों दुकानों में। तो ये जब दोनों दुकानों में पहुंचे, तो वहां ये दुकान वाले संस्कृत में बात कर रहे थे, किसके शिष्य थे, नरोत्तम के। और वो जो संस्कृत में जब बात कर रहे थे, इतना वाद विवाद हुआ कि वहां के संस्कृत जो ये स्टूडेंट थे उनको हराया, और जो पंडित नरोत्तम दास ठाकुर को हराने के लिए ले गए थे उसी को भी बुलाया। और इन दोनों ने, दुकान वालों ने उस रूप नारायण को भी हरा दिया। तो इन लोगों ने सोचा कि जिसके शिष्य इतने पावरफुल है, दुकान वाले होकर भी जो हमें हरा सकते हैं, तो वो गुरु कैसे होगा। तो मतलब कितना कर्तव्य है एक शिष्य का, अपने गुरु के लिए क्या होना, इस प्रकार की भावना को स्थापित करना। तो इन दोनों, ये जो दो डिवोटीज थे, इन्होंने दिखा दिया उनको हरा कर। और वो आश्चर्यचकित रहे कि जिनके शिष्य इतने पावरफुल हैं, तो वो गुरु कितने पावरफुल हो सकते हैं। जैसे हम सबने प्रभुपाद को नहीं देखा पर्सनली, लेकिन हमने किसको देखा है, प्रभुपाद के शिष्यों को। प्रभुपाद के शिष्य इतने शक्तिशाली हैं, तो हम क्या समझ सकते कि प्रभुपाद कितने पावरफुल, कितने दयाशील होंगे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर फाइनली हजारों लोगों को भक्त बनाते हैं और अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार आदि नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर को यह अहंकार नहीं था कि मुझे तो साक्षात भगवान ने मेरे लिए प्रेम रखा था। तो जब इनको शरीर त्यागना था, तो हजारों डिवोटीज एकत्रित हुए और एक गांव जिसका गांव का नाम था गांबलिया, तो उस गांव में नदी के किनारे गए जहां चैतन्य महाप्रभु का मंदिर था। वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु का परमिशन लेते हैं और नदी के दोनों किनारे उनके शिष्य जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और अपने शरीर को त्यागने के लिए वो तैयार हो गए। पहले तो एक वर्णन आता है कि चिता उनके शरीर को जलाने के लिए क्या रखी, उन्होंने अपने शरीर को एक प्रकार से त्यागा मूर्छित होकर, और फिर सब उनके शरीर को चिता के ऊपर रखा। तो जितनी ये उनसे द्वेष करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा देखो इनके साथ ऐसे होना चाहिए था। तो उनके शिष्य थे जिन्होंने कहा, राम नारायण चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि ये सारे लोग आपके प्रति अपराध कर रहे हैं, इस प्रकार से कह के कि आपके साथ ऐसे होना चाहिए था, मरना ही था आपको। तो उन्होंने कहा कि आप इनके ऊपर दया करने के लिए प्रकट हो जाइए। तो उस चिता से भी नरोत्तम दास ठाकुर उठते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। जितने उनके द्वेषी विदेह ईर्ष्या करने वाले लोग थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा लेते हैं।
उसी के 15 दिन बाद नरोत्तम दास ठाकुर अपने शरीर को त्यागते हैं। कैसे? वो अपने दो शिष्यों को गंगा में ले जाते हैं और बाकी हजारों शिष्य नदी के दोनों तट पर जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और उन शिष्यों को कहते कि आप क्या करो, जल ले लो गंगा का और मेरे शरीर में डालो अपने हाथ से। जैसे जैसे उनके शिष्य वो जल को शरीर के ऊपर डालते थे, वैसे वैसे शरीर मेल्ट होता था, क्या कहेंगे मेल्ट को, पिघलने लगा। और पिघला तो कैसे है, दूध के रूप में, कैसे दूध बना उनका, सबके आंखों के सामने नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर दूध में परिवर्तित हुआ और सबके आंखों के सामने वो शरीर ओझल हो गया। तो हम देखते हैं कि वहां से कृष्ण प्रेम तनु, कृष्ण प्रेम से बना उनका दिव्य शरीर इस प्रकार से अप्रकट होता है। तो आज भी उनके जो विग्रह हैं ब्रज मोहन, वो वृंदावन में है, इस्कॉन वृंदावन के डिवोटीज आज वृंदावन में उनके ड्यूटीज के सामने कीर्तन कथा आदि करने वाले थे, आज प्रोग्राम था वहां। और नरोत्तम दास ठाकुर का पुष्प समाधि अब गोकुलानंद मंदिर जाते हो तो वहां है, आज भी विराजमान है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने दो ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ थे प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत इजी है, बहुत सरल है। व्यक्ति के पास दो आना होना चाहिए, पहले करण से था ना आना, आप कह सकते कि दो रुपए होने चाहिए। तो कोई पूछे कि दो रुपए होने से क्या कृष्ण प्रेम मिलेगा? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते कि निश्चित रूप से दो रुपए से कृष्ण प्रेम मिलेगा, ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या करना होगा उस व्यक्ति को दो रुपए से, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं व्यक्ति को मार्केट में जाना होगा और नरोत्तम दास ठाकुर ने जो दो ग्रंथ लिखे हैं प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, उनको खरीदना होगा, बस उनका अध्ययन करना इनफ है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो ये दो ग्रंथ सॉन्ग बुक है, ये दोनों प्रार्थना जिसमें चार प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया है नरोत्तम दास ठाकुर ने, और ये सब प्रार्थना उनके मुख से निकले जब वो कृष्ण और वृंदावन के विराम में थे। ये जो गीत हमने अभी गाया था जयानी लो प्रेमधन, जब उनको पता चला कि उनके प्रिय मित्र श्रीनिवास आचार्य ने शरीर त्यागा है, तब नरोत्तम दास ठाकुर के मुख से ये जयानी लो प्रेमधन उनके विराह में निकल पड़ता है कि कहां गए आचार्य ठाकुर, जो कौन थे उनके बहुत क्लोज डिवोटी थे। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर के जो ग्रंथ हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अपने जो घर में स्टडी टेबल थे उसके ऊपर स्कूल की किताबें रखता था, तो जो भक्ति विनोद देखते थे कि बेटा तो स्कूल की किताबें पढ़ रहा है, लेकिन नीचे जो छोटा सा ड्रावर था उसमें नरोत्तम दास ठाकुर की बुक्स रखता था और जब पिताजी जाते थे उसको ऊपर लेके पढ़ता रहता था। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मठ को या आश्रम को कोई ज्वाइन करता था फुल टाइम तो उनको ये बुक देते थे, कौन से नरोत्तम दास ठाकुर के पढ़ने के लिए, और एक तो उपदेश अमृत देते थे पढ़ने के लिए और एक ये नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना और एक चैतन्य भागवत। वो कहते जो भी नया है उसको ये तीन ग्रंथ पढ़ने चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव है, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका अनुराग चैतन्य चंद्र के चरणों में था, हमारा भी थोड़ा अनुराग चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के प्रति, उन्होंने जो हरि नाम दिया उसके प्रति हो। और आज के दिन जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को गाया जा सकता है या उन गीतों को सुना जा सकता है, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर तिरुमला।